لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورة مباركة شعراء، قرآن کا سورة نمبر 26، اور اس کی یہ لاسٹ آیت ہے کہ جس کی تلاوت دو مجالس کے لیے کی گئی، ایک یسٹرڈے اور ایک ٹوڈے. میری ایک ہیبٹ ہے کہ میں پورا عشرہ کسی ایک آیت پہ نہیں پڑھتا ہوں، بلکہ مختلف مجالس میں آیتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، تاکہ 10 دن کے حوالے سے 8-9 قرآن کی نئی آیتیں یا نئے میسج لوگوں تک پہنچتے رہیں. لیکن ایک بات کو یہاں پہ بالکل شروع میں واضح کر دیا جائے کہ قرآن کی آیتوں کی نمبرنگ میں عالم اسلام میں اختلاف ہے. آج کا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیکن 1400 سال سے قرآن کی آیتوں کی نمبرنگ، ایون پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، فیمس قول یہ ہے کہ 6666. لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ 6236. یہ 400 آیتوں کا فرق پڑ رہا ہے نمبرنگ کے اندر. تو جب کبھی میں کسی آیت کا نمبر آپ کے سامنے پڑھوں تو 1+ یا 1- کا مجھے مارجن دے دیا کرے. سورہ مبارکہ شعراء کی یا لاسٹ آیت، جس میں قرآن کریم آدم سے لے کے قیامت تک کے ظالموں کو ایک میسج دے رہا. کل میں نے اس میں آدھی بات کہی تھی، آج باقی آدھی بات کہے کہ پھر اس آیت کی تفسیر اور تشریح. کل میں نے کہا تھا کہ یہ آیت ہر ظالم کے لیے ایک میسج ہے کہ اے ظلم کرنے والے، تیرا کیا خیال ہے کہ اسی طرح سے تیری طاقت ہمیشہ رہے گی اور تو اسی طرح سے ظلم کرتا رہے گا؟ نہیں، بہت جلد اسی دنیا کے اندر ہر ظالم کو پتا چلے گا کہ چینج کتنے جلدی آ رہی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ظالم کے لیے میسج ہے، مگر سب سے زیادہ یہ آیت کربلا کے کانٹیکسٹ میں ہمارے سامنے آئی. یہ آدھی بات تھی جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور اس کو کمپلیٹ کرنے والا جملہ آ جا رہا، اور وہ یہ کہ اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر. ایک تفسیر تو تھیوری والی ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی ہے، جو پیپر پر ہے، اور اس آیت کی جو پریکٹیکل تفسیر ہمارے سامنے کمپلیٹ ہو کے آئے گی وہ امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ مکمل ہوگی. امام کا آنا دنیا کے ہر ظالم کے لیے یہ میسج ہے کہ قرآن کریم کے سورہ شعراء کا، جو ایک اللہ کا پرومس ہے مظلوموں کے ساتھ، وہ پورا ہونے کا وقت آ گیا. مگر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا اور ظہور امام، ہمارا ٹاپک ہے کربلا سے امام زمانہ تک. کربلا اور امام زمانہ، ये एक ही जिहाद के दो हिस्से हैं। और अगरचे यहां पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन आज मजलिस के शुरू में वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, वो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन महाराज, करबला उस जिहाद का पार्ट ए है और इमाम जमाना उस जिहाद का पार्ट बी। और करबला के लिए जो जमाने के जालिमों ने पॉलिसी इख्तियार की थी, वही इमाम जमाना के अगेंस्ट पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। अंग्रेजी का एक लफ्ज है, मेरी अंग्रेजी तो आपको मालूम है कि बिल्कुल गलत सलत होती, लेकिन शायद अंग्रेजी के अंदर एक चीज मशहूर है पॉलिसी के हवाले से, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। करबला के मौके पर भी यह पॉलिसी इख्तियार की गई थी और इमाम जमाना के जहूर से जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग जिहाद ऑफ इमाम जमाना। एक बात हर मोमिन के जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इमाम का जिहाद कोई मेडिकल का जिहाद नहीं। अगर मेडिकल के जरिए से इमाम को कोई रेवोल्यूशन लाना होता तो 11 इमामों को इतने ज्यादा प्रॉब्लम फेस न करना पड़ते। तो इमाम का जिहाद कोई मेडिकल के जरिए नहीं होगा कि जिस तरह हम बटन दबाते हैं और एक मर्तबा लाइट आ जाती है, वो नहीं। इमाम के जिहाद को एक खासा टाइम पीरियड चाहिए होगा और उस दौरान जो जालिम है उनकी पॉलिसी वही रहेगी कि कैरेट एंड स्टिक वाली। और ये वो मैसेज है जो एवरी शबे जुमा दुआए कुमैल के एंड में आपको दिया जाता, कि जो करबला में थे उनके लिए भी दुआए कुमैल बिफोर करबला हमारे सामने आई। और जो इमाम जमाना का टाइम पीरियड जिनको मिल जाएगा, ऑल्दो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि कोई आदमी इमाम जमाना के जहूर के टाइम को फिक्स कर, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी मिस्टेक। लेकिन बहरहाल जो साइंस ऑफ जहूर बताए गए, जिसमें अगर आप सीरिया के करंट सिचुएशन को इंक्लूड कर ले तो दिल को एक किस्म का सेटिस्फेक्शन हो रहा। यह हदीस में नहीं आया, ये इमाम ने नहीं कहा, लेकिन दिल को एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि शायद यही जमाना जस्ट बिफोर जुहूर का जमाना। लेकिन जस्ट बिफोर जुहूर के जमाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जालिमों के पास वही कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होगी। उर्दू में हम कहते हैं छड़ी और गाजर, कुछ लोगों को टॉर्चर के जरिए से रोका जाएगा और कुछ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के टेम्पटेशन और लालच के जरिए। दुआए कुमैल, अल्लाहुम्मा वमन अरादनी बिसुइन फअरिदहु वमन कादनी फकिदहु। बिल्कुल यही पॉलिसी है जो दुआए कुमैल में एवरी शबे जुमा आपको याद दिलाई जाती है। एवरी शबे जुमा एक रिमाइंडर आपके लिए आता कि दो किस्म के जालिम होंगे हर जमाने में, लेकिन स्पेशली करबला के टाइम पर। नहीं, अभी इतनी जरूरत नहीं आपको जहमत की, अभी बहुत जगह हॉल के अंदर है। तो इन एडवांस आप तैयारी कर रहे, अच्छी बात है, यही तो मेरा सब्जेक्ट है कि इमाम जमाना के लिए भी हमको इन एडवांस तैयारी करना। दो चीज, फमन अरादनी बिसुइन फअरिदहु, जो मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, दुआए कुमैल की प्रैक्टिकल तफसीर, आए खुदा जो हमारे खिलाफ बुराई और जुल्म करे। ये जुमला जियारत आशूरा में भी रिपीट होगा। मिडिल ईस्ट, इस्लामी कंट्री, पाकिस्तान और बहरीन और सऊदी अरब और सीरिया, वहां पे हमें ये नजर आ रहा। और इसको बहुत शॉर्ट करके हमारे यंगस्टर जानते हैं, सोफियानी, वमन कादनी फकीर, और जो चीटिंग के जरिए, फरेब के जरिए और धोखे के जरिए से हमें हक के रास्ते से हटाना चाहे, तो आए खुदा उसकी ये प्लानिंग उसी पे वापस पलटा दे, जिसे बहुत ही शॉर्ट करके अगर कहा जाए तो दज्जाल। लेकिन ये सुफियानी और दज्जाल बहुत फेमस टर्म हो चुकी, डिटेल इसकी लोगों को नहीं मालूम। एक स्टिक लेके आ रहा है जो सुफियानी, एक कैरेट लेके आ रहा है जो दज्जाल। लेकिन मैं करंट सिचुएशन को देखते हुए इसको अपनी वर्डिंग में बयान करूं, सीरिया, बहरैन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, गर्दनें कट रही हैं, खून बह रहा, जवानों के लाशें उठाए जा रहे हैं, एक एक फैमिली के साथ साथ और दस दस आदमी एक वक्त में शहीद किए जा रहे हैं। ये सुफियानी, ये स्टिक। और दूसरी जानिब फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, आईफोन, आईपैड, ये सारी चीजें हैं दज्जाल। वमन कादनी फकीद। कभी कभार कुछ लोग वेस्ट में आकर ये समझते हैं कि हम बड़ा, हमने ये वाइज डिसीजन लिया कि ऐसी जगह आ गए कि जहां हमारी जान, हमारी इज्जत, हमारी औलाद और हमारा माल महफूज और प्रोटेक्टेड। और वो बेचारे अनलकी लोग जो इंडिया में रह गए, जो पाकिस्तान में रह गए, जो सीरिया में रह गए, जो बहरीन, कैसे रोजाना उनको जालिमों के जुल्म को फेस करना पड़ रहा। ये तो अब कयामत के दिन पता चलेगा कि जो ये समझ रहा है कि वो सक्सेसफुल है, वो है भी कि नहीं, और जिससे हम समझ रहे हैं कि वो बेचारा फेलियर है, वो फेलियर है भी कि नहीं। अकीदे की हद तक तो हर मोमिन एक जुमला कहता, इस जुमले को अपने करंट सिचुएशन में और जहां पे आप रह रहे हैं वहां लेके जाइए। अकीदे की हद तक तो हर आदमी एक जुमला कहता कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरा ईमान। माल जाता है चला जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। जान जाती है चली जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। औलाद जाती है तो चली जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। अकीदे की हद तक हर आदमी ये कहता। फिर जनाबे हिस्कील और उनकी वाइफ जनाबे सियाना से लेकर मौलाए मुत्तकियान के अहम तरीन सहाबी हुजूर इब्ने अदी तक, ये स्टोरीज हैं। और मैंने खुद भी बर्मिंगम के इस मिंबर से ये सारी चीजें इससे पहले के सालों में पढ़ी। जनाबे हिस्कील के वाकये पे पूरी मजलिस में यहां पढ़ के गया। मेरी अपनी कोशिश यह है कि चीजें कम से कम रिपीट हो, रिपीट तो होंगी लेकिन कम से कम। जनाबे हिस्कील और जनाबे सियाना, जनाबे सियाना के लिए एक जुमला ऐसा कहूं जो आगे जाकर मेरी एक फुल मजलिस बनने वाला, और वो ये कि ये उन 13 लेडीज में से हैं, वन ऑफ द 13, जिनका नाम लेकर मासूमीन ने ये इरशाद फरमाया कि जो फर्स्ट आर्मी इमाम जमाना लेकर आएंगे 313 की, उसमें 13 औरतें होंगी। औरतें 13 से ज्यादा हैं, तकरीबन 50, 13 के नाम इमाम ने लिए और उनमें से एक नाम सियाना का। हमारे यहां पहले ये सवाल लोग बहुत करते थे और अभी भी कहीं कहीं ये सवाल लोग आज भी कर लेते हैं कि मौलाना इमाम जमाना की आर्मी में तो सारे मर्द हैं, औरतों का रोल क्या होगा। इसका मतलब यह है कि इमाम जमाना की आर्मी के लिए नॉलेज कितनी कम। 50 औरतें इमाम की फर्स्ट आर्मी में, फर्स्ट इमाम की एक्चुअल आर्मी तो मोर देन 10,000, पहली जो आर्मी है 313 उसमें 50 औरतें, और 50 में से 13 के नाम हैं। नाम का मतलब बहुत ही फेमस औरतें, जनाब सियाना, जुबैदा खातून है, उम्मे खालिद हैं, एक सदका जारिया वाली, एक जिसने मौत कबूल कर ली, शराब नहीं पी, और एक सियाना जिसने अपनी औलाद को अपने सामने शहीद होते देखा लेकिन अपने ईमान को नहीं छोड़ा। तो ये पूरी एक आगे फुल मजलिस बनेगी कि करबला से लेकर इमाम जमाना तक में औरतों का रोल क्या। मगर इस वक्त जो बात मैं कह रहा था बहुत शॉर्ट में, वो ये कि जनाब हिस्कील से लेकर जनाब हुजूर इब्ने अदी तक, सीरिया लोग ज्यारतों पर किस कसरत के साथ जा रहे थे, और इंशाल्लाह ये हालात बहुत जल्द खत्म होने वाले और दोबारा उसी शान के साथ बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग सीरिया की सारी ज्यारतें करेंगे। ये याद रखिएगा, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अपने बुजुर्ग उलमा और खास तौर पर बाज मराजे के कॉल को नकल कर रहा हूं जिनका नाम लेने की मुझे परमिशन नहीं। खैर, तो हुजर इब्ने अदी, सीरिया जाने वाला हर आदमी जानता, तो एक सिलसिला चला आ रहा जनाब हिस्कील जिनका तस्किरा कुरान में आया, वहां से लेके हुजर इब्ने अदी तक, कि जहां पर हमें मैसेज ये मिलता कि ईमान सबसे ज्यादा अहम है, हत्ता ये कि अपनी औलाद भी कुर्बान कर दो। जबान से हर आदमी ये कहता, माल जाता है चला जाए कोई वांदा नहीं, ईमान बचना चाहिए। जान जाती है चली जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। औलाद मरती है तो मर जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। मगर जब आप कंपेयर करते, ये हम वेस्ट में बैठे, हमारी इज्जत महफूज, हमारी जान महफूज, हमारा घर महफूज है, बेचारे पाकिस्तान के मोमिनीन, अरे आज चार आदमी शहीद हो गए, आज पांच के घर जला दिए गए, आज दस के बिजनेस लूट लिए गए, और इस तरह से कंपेयर किया जाता है अपने और उनके दरमियान, जैसे हम बहुत अकलमंद हैं और हमने कोई बहुत अकलमंदी का फैसला किया। ठीक होगा, लेकिन कंपेयर इस तरह ना करें, कंपेयर इस तरह करें कि हर शहादत के बाद और हर मकान के जलने के बाद और हर दुकान के लूटे जाने के बाद उनके ईमान में कमी आ रही है कि उनका ईमान बढ़ रहा, और हर फैसिलिटी के बाद हमारा ईमान उतना है जिसे लेके हम यहां आए थे, कि हर जनरेशन में ईमान थोड़ा सा कम होता चला जा रहा। अगर आप ये खुद फील करें, बास चीजों में मासूमीन ने हमें एक एडवाइस दी, और वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि इसमें फतवा अपने दिल से लो, ये हलाल और हराम, ये इस्लामिक लॉज, ये नजासत और तहारत नमाज और रोजे के लिए नहीं। लेकिन कुछ चीजों में इमाम ने कहा कि फतवा अपने दिल से लो, खुद अपने आप से पूछो, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। यहां भी अपने आप से पूछना कि जितना ईमान लेके आए वो ईमान हमने बचा लिया, उसे बढ़ा दिया है। ऐसे भी लोग मैं जानता हूं, ऐसे भी लोग हैं कि जो ईस्ट अफ्रीका और पाकिस्तान में इतने रिलीजियस नहीं थे, जब जो यहां आके बन गए, तो ऐसे हैं या ईमान हमने जरा सा लूज कर दिया, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या? अगर आपका दिल कहे कि हम बेहतर हैं पहले से, ये आपकी कामयाबी है, ये आपका जिहाद करबला में 21st सेंचुरी का पार्टिसिपेशन है। अब ये बातें डिटेल से आती रहेंगी, लेकिन बात ये कहना थी कि सुफियानी यानी वमन अरादानी में सुईन, वो लेकर आएगा हमारे माल को नुकसान पहुंचाने वाली स्टिक, वो लेकर आएगा हमारी गर्दन काटने वाली स्टिक, वो लेकर आएगा हमारी औलाद को शहीद कर देने वाली स्टिक। और दज्जाल वो ये चीजें नहीं लाएगा, वो हर वो चीज लेके आएगा जो हर दिन गुजरने के साथ हमारी फैमिली के ईमान को कम करती चली जाएगी। यही वजह कि इस्लाम सबसे इंपॉर्टेंट इबादत किसे करार दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट इबादत इल्म, इल्म। जिहाद करबला में आका हुसैन मोर देन 72 को अपने साथ लेकर गए थे, और हमें नहीं मालूम कि आका ने क्या क्राइटेरिया रखा था। सिर्फ एक मुजाहिद, तीन दिन के बाद जिनका तस्करा होने वाला, हबीब इब्ने मुजाहिर के नाम आका हुसैन का रिटर्न खत मिलता, और उसमें क्या जुमला था, मिनर रजुलिल फकीह, यह खत मैं उसके नाम लिख रहा हूं जो मर्द फकीह है, जो दीन को समझता, जिसके पास दीन की नॉलेज है, उसको बुलाया जा रहा। मगर जब हम जम करके जाते जुहूर इमाम तक, और पूछा जाता ये आठवें इमाम की हदीस है, हमारे आठवें इमाम इमाम अली इब्ने मूसा रिजा अलैहि सलातु वस्सलाम, मौला इमाम जमाना की फौज की सबसे अहम खसूसियत क्या होगी, क्वालिफिकेशन। बहुत लेंदी हदीस है, मैं आज शॉर्ट करके पढ़ रहा हूं, दो दिन के बाद इमाम जमाना की फौज की 25 क्वालिटीज आपके सामने आएंगी। रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, जैसे आदमी कहीं अप्लाई करता है तो अपना सीवी भेजता, इमाम जमाना की फौज में जितनी भी उनकी आर्मी उसका सीवी जो है उसमें क्या लिखा होगा 25। मगर बहुत ही शॉर्ट करके मौला जमाने के इमाम की फौज में सबसे ज्यादा अहम क्या बात है, कहा कि उस फौज में अगर 20 साल का नौजवान भी होगा तो हलाल और हराम की कंप्लीट नॉलेज इसके पास होगी। ये इस्लाम की सबसे अहम इबादत है। बहुत छोटी सी दो चीजें बयान करके आज के सब्जेक्ट पे आता हूं। पहली बात, अगर आप अपने घर में दुनिया भर की शैतानी चीजों के साथ कोई ऐसा चैनल भी रखते हैं केबल पर या डिश पर जो आपको यह बता रहा हो कि इस वक्त कर्बला में क्या हो रहा है, तो आपको मालूम है हर साल आप देखते हैं कि जैसे जैसे आशूरे की तारीखें करीब आएंगी जायरीन कर्बला की जाने पूरे पूरे काफिले जा रहे हैं। अरबईन करीब आता, अराफा करीब आता, 15 शाबान करीब आती, जियारत करने वालों की कौन कितनी कसीर तादाद कर्बला जाती, यहां तक पूरी एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है इससे ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ एक दिन कर्बला में इमाम मजलूम की जरी की जियारत के लिए पहुंचती। ये वो लोग जिन्हें आका हुसैन की जरी की जियारत करना, पैदल भी जा रहे हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वेस्ट से भी पैदल जायरीन की तादाद बढ़ती जा रही, ये सारे लोग आका हुसैन की जियारत के लिए जा रहे हैं। मेरा एक सवाल और वो ये कि जो जियारत के लिए जा रहे हैं यकीनन वो सारी हदीसें आपको भी मालूम है और मुझे, जिसमें जियारत करने वाले की फजीलत और सवाब बताया गया, मगर कॉमन सेंस की एक बात, उसका रुतबा या स्टेटस हाई है जो आका हुसैन की जियारत के लिए जाए, या उसका स्टेटस हाई है कि जिसके पास चल के खुद आका हुसैन आए? आका हुसैन के पास जाने वाला बड़ी फजीलत बड़ा सवाब, बाज वाकयात में यहां तक मिलता है कि जायरीन के चलने से जो डस्ट और मिट्टी उड़ती है वो अगर किसी के बदन में पड़ जाए तो अल्लाह उसको जन्नत दे देता। जाहिर की बात छोड़ें, जाहिर के पैरों से जो मिट्टी उड़ रही वो अगर किसी के बदन पे पड़ जाती है तो जहन्नम उसके लिए हराम और जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती। ये जियारत करने वाले की फजीलत। हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी का एक फतवा, क्योंकि अभी अभी मैं खुद भी हज करके आया हूं, एक फतवा, सवाल किया गया कि अराफा के दिन कर्बला की जियारत का सवाब ज्यादा या हज बैतुल्लाह का, बाकायदा रिटर्न फतवा किताब के अंदर। देखिए, जो जबानी लोग फतवे पूछ के आते हैं आगाह सिस्तानी से उसके ऊपर रिलाई करना बड़ा मुश्किल होता, क्या पूछा गया, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, सुनने वाले ने कितना सुना, सुनने वाले ने कितना समझा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और फिर स्पेशली आप में से हर एक को मालूम कि खास तौर पर आगाह सिस्तानी जियारत के इन तारीखों में जब हमारे जायरीन जाते हैं कितने बिजी होते हैं, एज भी आपको पता है कि मोर देन 80, दुनिया भर की मरजियत की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर और फिर जायरीन से मुलाकात भी, चुनाचे बाज औकात जवाब बहुत शॉर्ट देते हैं। इसीलिए जब तक के रिटर्न में जवाब ना हो या बुक में प्रिंट ना हो उस पर रिलाई करना बहुत मुश्किल होता। ये अलग बात है कि पिछले 5 साल से मैं चीज को फॉलो अप कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी साल में 2-2 मरतबा जियारत के लिए जाने का शरफ मिल रहा है और मुख्तलिफ काफिलों को